काशीनाथ सिंह, जन्म सन 1937 ईस्वी, कविता की नई तारीख। यह पहला मौका था, जी हाँ पहला ही कहिए, जब मैं अपनी बीबी और दो बच्चों के साथ कहीं बाहर निकला था और कुछ दिनों के लिए किसी का मेहमान हुआ था। ऐसा करते समय मेरे दिमाग में दो बातें थी। पहली यह कि जिस जड़ता, एक रास्ता और ऊब को पिछले 10 सालों से मैं झेल रहा था, उससे नजात पाना बेहद जरूरी था। जरूरी इसलिए कि छोटी से छोटी बात पर भी मेरी झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। बीवी से, बच्चों से, मेहमानों से, गरज की हर मिलने वाले से जब भी मैं बोलता, झुंझला कर बोलता, उन पर नाराज हो उठता, उनसे झगड़ा कर बैठता, और यह सब बिला वजह। दूसरी ओर महीने के महीने गुजर जाते, पत्नी के चेहरे पर हंसी क्या मुस्कान तक न दिखाई पड़ती। इन सारी बातों के लिए उनके पास एक ही जवाब था, किस्मत। जब मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा है, जब मेरी किस्मत ही ऐसी है। मेरा उनसे कहना था कि जब उन्हें कारण का पता चल गया है, तब तो मुस्कराने में कोई हर्ज नहीं है, और इस तरह रात दिन रोया गिराए रखना भी एक गलत है। एक छोटी सी जिंदगी दी है हमारे माँ बाप ने, इसलिए जब तक है ताव के साथ जिया जाए। लेकिन जब भी मैं ऐसा कहते कहते उखड़ जाता, उन्हें विश्वास हो जाता कि डॉक्टर सही था, मुझे अपना रक्तचाप चेकअप करवा लेना चाहिए, और ऐसा ख्याल आते ही वे और भी खिन्न हो उठती, किस्मत में यदि यही है तो जो होना है हो। दूसरी बात यह कि जिसके यहाँ हम गए थे, उसने काफी तंग कर रखा था। वह साल में पता नहीं क्या कर करा के 15-20 रोज की छुट्टी लेता, गैराज से अपनी कार निकालता, उस पर सारा परिवार लादता और दूसरे शहर के लिए चल देता। और दूसरा शहर भी कहाँ, मेरे घर। यहाँ साला खाने का ठिकाना नहीं, और कर्जे ले लेकर अंडे और मछली और गोश्त और फ्रूट जूस और जैम और ड्रिंक और सारी व्यवस्था उलट पुलट हो जाती, और आने वाले 6 महीने के लिए मेरा दिवाला निकल जाता। मैं तो थोड़ी देर के लिए खुश भी हो लेता, क्योंकि यही मौके होते जब कार पर बैठने का सुख मिलता और मेरी गर्दन खिड़की के बाहर ही निकली रहती कि जो भी मुझे थोड़ा बहुत जानता है वह देख ले कि मैं कोई फालतू आदमी नहीं हूँ। लेकिन पत्नी की हुलिया खराब हो जाती, क्योंकि उनका कहना था कि इनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन ड्राइवर और नौकर दोनों मिलकर इतना खाते हैं जितना हमारा सारा परिवार। वे तो चले जाते, लेकिन बीवी की दवा करने में मेरी हुलिया बैठ जाती। यही एक मजेदार क्या दर्दनाक कहिए वाक्या का भी जिक्र कर दूं। यदि कोई मेहमान आए रेलगाड़ी से, तो वापसी के लिए आरक्षण करवाएगा ही, इसलिए हमें इतना पता चल जाता है कि उसे कब जाना है। भविष्य का यह निश्चय दिमाग को राहत और सुकून देता है, लेकिन अपनी फिएट गाड़ी यह दिमाग को ही नहीं, भविष्य को भी अंधकारपूर्ण बनाए रखती है। जब भी हमें मौका मिलता है, हम सोचते अंधेरे में आंखें मिचमिचाते और नींद का सपना देखते और बिस्तर पर पड़े पड़े सोचा करते कि हे प्रभु, हमारे पिछले दिन कब लौटेंगे। निहायत ही संगीन और गोपनीय एक और मामला है जिसे मैं अपने सीने में छिपाए हूँ। वे आते हैं, रहते हैं और कहते हैं, कवि जी जरा इधर भी ध्यान दीजिए, एक तो आपकी छत बेहद नीची है, दूसरे इसकी दो धरने भार से लपक कर टेढ़ी हो गई हैं। सावधानी न बरतिएगा तो मकान ही बैठ जाएगा। खैर मनाइए कि हम पतले हैं, वरना सीढ़ियाँ ऐसी हैं कि मोटा आदमी बीच में ही अड़स जाए। बाथरूम ऐसा है कि इसमें सिर्फ बैठकर और खड़े हो सकते हैं। इसकी खिड़कियां और दरवाजे मोहनजोदड़ो कालीन हैं। ऐसे काम न चलेगा। घर में 4-5 मच्छरदानियां तो रखवा दीजिए कवि जी। एक तरह से देखिए तो वह हमारे फायदे के लिए ही दी जाने वाली हिदायतें हैं, लेकिन जरा दूसरी तरह से देखिए तो देखा है आपने, यह हमारी जेब के सारे पैसे निकलवा लेना, कपड़े उतरवा लेना, फिर गले लगाना और अंत में चूतड़ पर 4 लात मारकर चल देना। ये सारी बातें थी। इसलिए जब पत्नी ने कहा कि उनकी किस्मत में बच्चे पैदा करना, चूल्हा चक्की करना और घर में पड़े सड़ते रहना ही है, तो सहसा मैं मुगले आजम के पृथ्वीराज कपूर की तरह चहलकदमी करने लगा। मैंने वह मुहल्ला याद करने की कोशिश की जिस पर हमें धावे मारना था। यहाँ फिर एक दूसरी मुसीबत आन पड़ी। जैसा मुझे बताया गया था, अब तक उस कॉलोनी का नाम झगड़े में चल रहा था है। बदकिस्मती से उस नई कॉलोनी में दो भूतपूर्व मंत्रियों के विशाल भवन हैं और विवाद इस पर है कि कॉलोनी किसके नाम पर हो। नई सरकार के आवास मंत्री चूंकि दोनों के मित्र हैं, इसलिए उन्होंने बातचीत के जरिए यह रास्ता निकाला कि जो पहले स्वर्गीय होगा उसके नाम पर कॉलोनी और दूसरे के नाम पर राजमार्ग मार्ग। मेरे भावी मेजबान ने बताया था कि दोनों मंत्री एक साथ रक्तचाप और मधुमेह के शिकार हो अपने अपने बिस्तर पर पड़े हैं और दोनों को दो बार दिल का दौरा पड़ चुका है। सो मैंने उसके दफ्तर के पते पर तार दिया, बीवी और दो बच्चों को साथ लिया और चौथे रोज उस शहर के लिए रवाना हो गया। जिंदगी में पहली बार मैंने गाना गाया, बल्कि कहिए गाया नहीं, पता नहीं कैसे अपने आप मेरे गले से स्वर फूट पड़ा। कुछ कुछ आज के वाल्मीकि की तरह कुछ ऐसा कि मुझे भी अचंभा हुआ और पत्नी को भी। बच्चों की तो जैसे हालत खराब थी, शायद उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि अरे इस आदमी से हम खामखा डरते थे, अब इससे डरने की क्या जरूरत, ऐसा सोचने का मेरे पास कारण है। गाते समय जैसे ही मैंने कहा कि तालियां बजाओ, वे हंस पड़े और सच मानिए पत्नी भी हंस पड़ी खिलखिलाकर। नहीं, पहले मुस्कुराई, देर तक मुस्कुराती रही, फिर तो ऐसी हंसी कि बस। यहीं इस वक्त मुझे एक नया अनुभव हुआ कि पत्नी भी हंस सकती हैं। जी हाँ, हंसना कतई नहीं भूली हैं। क्यों बेटो, मुर्गा खाओगे, मैं पूछने लगा। बकरा खाओगे, अंडे खाओगे, आमलेट और फ्राई, फल भी खाओगे, केले और संतरे और सेब। चलो जितना खाना हो खूब खाओ, जम कर एकदम लाल होकर जाओ, फिर लौट कर मेरा दिमाग मत चाटना। हाँ तो भाई हो जाए, राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगी। हो हाँ बोलो, नाचूंगी नाचूंगी। गाड़ी में ऐसी मस्ती छाई कि पूछिए मत। अगल बगल बैठे मुसाफिर हम लोगों को देखते ही रहे, कुछ तो देखते नहीं घूरते रहे, और मुझे और बच्चों को नहीं पत्नी को। मुझे कतई अटपटा नहीं लगा, लगा कि मुमकिन है अब भी उनमें कोई देखने लायक चीज बाकी रह गई हो जिस पर मेरा ध्यान नहीं गया है। गाने बजाने के साथ ही बच्चे सीट पर खड़े होकर फर्श पर चलकर पहली बार गाड़ी में बैठने का मजा लेते रहे। थोड़ा सा किरकिरापन वहां आया जब छोटे को टट्टी लगी। भीड़ इतनी कि पांव रखने की जगह नहीं, लेकिन मैंने तत्काल वीर रस से काम लिया। ऐसा करना उस समय बहुत जरूरी था, क्योंकि घर पर परिवार के राजनीतिक मामलों से मुझे बार बार मिमियाते देखकर पत्नी की धारणा हो रही थी कि मैं बहुत दब्बू और डरपोक हूँ। यही अवसर था जब मैं सिद्ध कर सकता था कि देखो, अगर कोई चोर उचक्का तुम्हारे गले की जंजीर लेकर भागने लगे तो मैं हिम्मत से काम ले सकता हूँ। ऐसा नहीं हो मेरे गले से आवाज भी न निकले। जब मैं छोटे को लेकर अपनी सीट पर आया तो गाड़ी खड़ी हो गई थी। हम बाहर निकले, मेजबान नहीं दिखाई पड़ा। मैंने धीरे से पत्नी से कहा, सामान उठाओ, जल्दी करो, हम प्रथम श्रेणी के डिब्बे के सामने खड़े हो जाएं। हम अभी उस डिब्बे की ओर चले ही थे कि उस तरफ से आता हुआ सानू दिखाई पड़ा, निराश और टूटा टूटा। हाय, वह जोर से बोला। मेरी समझ में नहीं आया कि इसमें हाय कहने की क्या जरूरत है, कौन सी काज गिर पड़ी है उसकी या मेरे सिर। यह बाद में ध्यान आया कि हेलो के बदले हाय मैं कहीं और भी सुन चुका हूँ, शायद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लड़के लड़कियों के मुंह से। यह तो हेलो का ही बिल्कुल नया रूप है। खैर, उसने मुझसे हाथ मिलाया। भाई साहब, आप इन लोगों से मिलिए, आप हैं मिस्टर खन्ना और आप मिस्टर बहल और आप मिस्टर वर्मा, जरा एक मिनट इधर तो आइए भाई साहब। वह मुझे खींचकर अलग ले गया। क्या कहें आपको, इतने बड़े बड़े अफसर मित्र हैं ये लोग, आपने जरा भी अपने प्रतिष्ठा का ख्याल किया होता, कम से कम स्लीपर तो ले लिया होता। ठीक है, आगे हवाई जहाज से आऊंगा, बस ना। ये लोग आपको जानते हैं अखबारों के जरिए, उसने गंभीर होकर कहा। चूल्हे भाड़ में जाएंगे पिल्ले, इन्हें क्यों लेकर आए तुम, मुझे गुस्सा आ गया। अरे धीरे धीरे बोलिए, उसने मेरी कोहनी दबाई। जंगी सामान उठाओ और चलो। दीदी आप बच्चों को संभालिए। हाँ तो साहबान, आप ही हैं कवि जी जिनका साढ़ू भाई होने का गौरव मुझे प्राप्त है और मुझे इस बात का इल्म है, गर्व है। पिछले दिनों सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था उसका नेतृत्व तो आपने ही किया था, आपको ही इस साल का सबसे बड़ा सरकारी पुरस्कार मिला है। आपसे पिछले दिनों राज्यसभा की सदस्यता के लिए कहा गया था लेकिन इनकार कर दिया था आपने। अभी पेरिस में अक्टूबर में जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, अफसर मेरे पीछे पीछे आ रहे थे और इस सारे झूठ ने मेरे पूरे शरीर में एक अकड़ पैदा कर दी थी, इतनी ज्यादा कि मैं जब पुल से उतर रहा था तो महसूस कर रहा था जैसे मैं हवाई जहाज की सीढ़ियों से उतर रहा हूँ, जिसके स्वागत के लिए लाउंज में बहुत सारे लोग हाथ में गुलदस्ते लिए खड़े होंगे। जब मैं दो कारों के आगे चलने वाली सानू की गाड़ी में गर्व से भर कर बैठने लगा तो पत्नी ने कान में कहा, छोटे को पैंट में ही दस्त हो गई है। सानू मेरा साढ़ू भाई और दोस्त, रेखा मेरी साली, दीपू और स्वीटी इनके फूल से प्यारे और खूबसूरत बच्चे, बस इतनी सी इनकी दुनिया है और इस दुनिया में थोड़े दिनों के लिए हम हैं और ये हमें हाथों हाथ लेने के लिए बेताब हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं और हम ब्रेकफास्ट पर बैठे हैं। मेरे बच्चे आंखें फाड़ फाड़ कर उस डाइनिंग हॉल को देख रहे हैं जिसके तीन तरफ कमरे हैं, ड्राइंग रूम और गेस्ट रूम के सिवा, और एक तरफ दरवाजा है जो टेनिस कोर्ट में खुलता है। पत्नी कभी मुझे देखती है और कभी इस विशाल भवन को और कभी हाल के बीच दो खम्भों के दरमियान रखे सोफे को। मैं साफ देख रहा हूँ कि उनके चेहरे पर मेरा सलाई की डिब्बी जैसी संकरा और चारों तरफ से बंद घर उभर आया है। मेरी प्यारी पत्नी, इस दुनिया में सुख बड़ी मुश्किल से मिलता है और हमारी खुशकिस्मती है कि आज मिल गया है, इसलिए उल्टी सीधी बातें मत सोचो और ड्राइंग रूम से आता हुआ पार्श्व संगीत सुनो, सुनो और खाओ। देखो कैसे कैसे व्यंजन इस मेज पर चले आ रहे हैं, नाश्ते के नाम पर घर में मिलने वाला चना और चाय भूल जाओ। मैंने आंखों के इशारे से अपने बड़े बेटे को मना किया कि मेज जो चमचमाते ताप पर अपनी शक्ल देख रहा है, मेज देख रहा था और तरह तरह के मुंह बना रहा था। भाई साहब, आज रात मैं आप लोगों को शीश महल में निमंत्रित कर रहा हूँ डिनर पर, सानू ने आमलेट का टुकड़ा कांटे में फंसाए हुए कहा। शीश महल शहर का सबसे अच्छा होटल, और यह निमंत्रण तो तहजीब इसे कहते हैं। कवि जी, चाय और मुकुंद टी स्टॉल के सिवा भी बहुत कुछ है इस मुल्क में, कभी जाना था आपने? मैंने कुछ नहीं कहा लेकिन गौरव से पत्नी की ओर देखा। इसके पहले भी उन्हें देखता था लेकिन इतने आप्यायित नेत्रों से नहीं, मगर क्या कहिए कि पत्नी दोनों बच्चों को देख रही थी जो आमलेट का भारी से भारी हिस्सा अपने छोटे से मुंह में ठूंस रहे थे। उनके हाथ में एक एक सेब पड़ा हुआ था और निगाहें कभी केले पर, कभी लंगड़ा आम पर और कभी टोस्ट पर लगा रही थी। बड़े लड़के गुड्डू ने तो मुंह में इतना अंडा ठूस दिया था कि जबड़े तक नहीं चला पा रहे थे। पत्नी शर्म से कभी मुझे देख रही थी, कभी उन्हें। बच्चे उनके भी थे मगर क्या बात थी। दीपू प्लेट में एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ता और मुंह में डालता और इस तरह मम्मी की ओर देखते हुए हौले हौले जीभ टुलाता जैसे वाह क्या बना है। जब उसका कांटा प्लेट से टकरा कर मेज पर गिर पड़ता और मम्मी ने पानी से धोकर फिर प्लेट में रखा तो दीपू ने सिर हिलाया थैंक यू। स्वीटी छोटी थी, उससे खाने के लिए जिद की जा रही थी लेकिन उसे भूख न थी। मम्मी बार बार उसे सेब देती लेकिन वह सिर हिलाती नो मम्मा थैंकू। वह प्यार भरी नजरों से रेखा और स्वीटी को देखता रहा फिर लयात्मक स्वर में बोला, जाने भी दो डार्लिंग, क्यों दिख कर रही हो, देखते नहीं कितनी दुबली है, रेखा ने कहा और एक खूबसूरत सा सेब जबरदस्ती पकड़ा दिया। स्वीटी मेज की मदद से नीचे उतरी और हाल में सेब के साथ खेलने लगी। वह कभी इधर से लुढ़काती सेब सामने की दीवार से टकराता और उधर से फेंकती तो फिर से टकरा जाता। रेखा उस पर सब जान से निछावर हो रही थी। दीदी, जब अगली बार आएंगी तो इस हाल में एक शानदार कालीन देखेंगी, रेखा ने कहा। पत्नी ने पूछा, ऑर्डर दे दिया है क्या, जाने कब का, हो सकता है आपकी जाते जाते आ जाए, सानू बोला। बच्चे खाए चले जा रहे थे और बड़ी हसरत से उस सेब को देख रहे थे जो इधर उधर नंगे फर्श पर लुढ़क रहा था। सच कहिए तो ये इस ताक में थे कि कब स्वीटी इस खेल से उब जाए और वे सेब उठा लें। डाली, सानू केले के छिलके उतारता हुआ रेखा से बोला, अगर भाई साहब के यहाँ आने की खबर अखबार में आ जाए तो यहाँ के सारे कवि और लेखक भीड़ लगा लेंगे, जानती हो कि नहीं, कहिए भाई साहब तो फोन कर दें, आपकी मेहरबानी से सभी संपादक अपने चेले हैं। अरे नहीं भाई, यहाँ हम आराम के लिए आए हैं, मैंने पत्नी की ओर देखा। पत्नी हंसी, यहाँ तो मुझे आदमी की तरह रहने दीजिए। हम सब साथ हंस पड़े। सानू ने काफी सिप करते हुए कहा, वैसे तो भाई साहब जिन्हें हमारे रिश्ते का पता है वे सभी मुझसे आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन आपकी किताबें मेरे पल्ले नहीं पड़ती। क्यों डाली? तुम भी यही कह रही थी। प्रश्न गंभीर था। मैंने समझना शुरू किया कि कायदे से मैं किनके लिए लिखता हूँ। गुड्डू ने सारी तस्तरियां चट करने के बाद चाय का प्याला उठाया। उसका हाथ कांप रहा था। मैंने रुक कर उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन सानू ने रोका। नवह जो कर रहा है करने दें, सेल्फ डिपेंडेंट होने दीजिए। मैंने छोड़ दिया। उसने प्यारे को होठों से सुड़का ही था कि जीभ जल गई। प्याला हाथ से छूटा और चाय बहती हुई रेखा की साड़ी पर टपकने लगा। ओ गॉड! रेखा हल्के से चीखी और सहसा मुस्कुराई। उसने प्यार से गुड्डू के गाल थपथपाए और बाथरूम की ओर भागी। पत्नी ने बाद में बताया कि साड़ी बनारसी सिल्क की थी और बड़ी महंगी थी। हम एकदम चुप हो गए। पत्नी डरी हुई आंखों से कभी मुझे देखती, कभी गुड्डू को और कभी सानू को। जीभ जलने से गुड्डू की आंखें छलछला आई थी। वह सहमा हुआ पिटने का इंतजार कर रहा था। बदतमीज कहीं के, पत्नी बुदबुदाई। नहीं बेटे, कोई बात नहीं, सानू ने हंसकर गुड्डू की पीठ थपथपाई। सिगरेट केस से एक सिगरेट निकाला और होठों से दबाया। वह गंभीर हो गया था और धुआं छोड़ते हुए कोई पश्चिमी धुन गुनगुनाता रहा। उसकी नजर बीच बीच में बाथरूम की ओर चली जाती। हरामी, पत्नी अब की थोड़ा जोर से बोली। डाली, सानू ने कहते हुए स्वर में रेखा को आवाज दी। वक्त हो गया, जल्दी करो। रेखा ने बाथरूम के अंदर से दाई को पुकारा। साड़ी ड्राई क्लीनर को दे, आ सुनती है, जल्दी कर। और वह बाहर निकल आई। चलो, उसने कहा और जाकर शीशे के आगे खड़ी हो गई। वंडरफुल, सानू ने कहा और रेखा के कंधे पर हाथ रखा। उसने बगैर उसकी ओर देखे उसका हाथ झटक दिया। मजाक अच्छा नहीं लगता। सानू हमें देख कर खिसियानी हंसी हंसा और कोमल की तरह चाबी फेंकी। गाड़ी बाहर निकालो। भाई साहब, ये तो नहीं आ सकेंगी, लेकिन लंच में मैं आपके साथ आपका साथ दूंगा। ओके, मैंने जाहिर कर दिया कि वक्त जरूरत जितनी अंग्रेजी हमें भी आती है। कोमल इस बीच खाने की मेज साफ कर रहा था। उसने जैसे ही थाली उठाई, रेखा घूम पड़ी। रुको, तुमसे 100 बार कहा चाय से भर कर प्याला मत दिया करो, तुमने क्यों दिया? साफ साफ, उसने हकलाते हुए सानू को देखा। क्या साफ? इधर देखो, क्यों दिया? भरा नहीं था साहब। तुमने दिया क्यों? भरा नहीं, खाली था साहब। रेखा गुस्से में कांपती हुई उसके सामने आ गई। तुमने क्यों दिया? मेरी बात का जवाब दो। कोमल सिर झुकाकर चुप हो गया। सानू दरवाजे के पास खड़ा होकर हौले हौले सीटी बजा रहा था और अपनी टाई की गांठ ठीक कर रहा था। अरे बोलता क्यों नहीं? रेखा दांत पीसती हुई एकदम आगे आ गई। क्यों दिया तुमने? खाली, उसने मदद के लिए जैसे सानू को देखा। चटाक, खाली के बच्चे, रेखा ने कसकर थप्पड़ लगाया। दीपू तालियां बजाई और हिकारत से बोला, इडियट बास्टर्ड। गुड्डू माँ के सीने से चिपक गया और हैरत से दीपू को देखने लगा। तो साहबान 1:30 बजे। सानू ने रेखा की कोहनी पकड़ी और वे बाहर हो गए। पत्नी कुछ देर चुपचाप बैठी रही, फिर धीरे से उठकर कोमल के पास गई। कोमल, गलती तुम्हारी नहीं थी दीदी, उसने सिर उठाया। यह कोई नई बात है, मैंने साल भर पहले बहन की शादी के लिए 500 रुपए लिए थे, उसी का भुगतान कर रहा हूँ। यह सब किस्मत का खेल है। वाह, देखा, सोचा, किस्मत यहाँ भी तुम्हारे साथ है। मैं कुछ और कहते कहते रह गया, क्योंकि मेरी आवाज से ही उसने अपना चेहरा मेरी ओर कर दिया था। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने सिर झुका लिया और उंगली से मेज पर लकीरें खींचने लगा। रेखा कचहरी चली गई, सानू अपने दफ्तर, दीपू और स्वीटी अपने मैदान में, यानी हाल के एक चौथाई आयतन को लकड़ी से घेरता हुआ एक मैदान जिसमें खेल और मनोरंजन की सारी सुविधाएं जुटाई गई थी। वे 11 बजे तक खेलेंगे, फिर नहाएंगे, खाएंगे, सोएंगे, फिर फलों का जूस, टीचर के आने पर घंटे भर पढ़ाई, शाम को टहलना, फिर अर्थात नियमित जीवन और उस जीवन का सिलसिलेवार बनाए रखने के लिए एक नौकर। गुड्डू शुरू में और छोटे ने उन बच्चों के साथ मिलकर खेलने की कोशिश की, लेकिन अंत में निकाल बाहर किए गए। पत्नी, मैंने और नौकर ने समझौते की बड़ी कोशिश की, मगर कोई लाभ नहीं। आरोप गंभीर थे। एक तो यह कि जो खेल वे खेलते हैं वह इनकी समझ में नहीं आ रहा है, दूसरे ये इस तरह चीखते हैं कि कान के पर्दे फट जाएं। तीसरे ये अक्सर नियम तोड़ते हैं और लड़ पड़ते हैं, इन्हें खेल का एटिकेट तक नहीं मालूम, लिहाजा ये मैदान के बाहर जाएं और वहां से खड़े होकर देखें। नहाकर जब मैं अपने कमरे में गया तो देखा पत्नी गुमसुम आंख खोले छत देखे जा रही है। मुझे कुछ अटपटा लगा, मैं उनके पास पहुंचा और प्यार से बोला, मालूम है शाम को शीश महल चलना है डिनर। उनकी आंखों के किनारे से एक बूंद ढुलकी और कान की दीवार में चली गई। उसका मतलब कि अब तक बीती घटना वे भूल नहीं सकी थी, चाहे वह साड़ी का खराब होना हो या कोमल का फिटना या दोनों। बात तो साड़ी से ही शुरू हुई थी, लेकिन मेरी समझ से लेकर पड़ रहना बेतुकी बात थी। यार खुश हो कि साड़ी तुम्हारी नहीं थी, मैंने उनकी नाक खिलाई। मैंने गौर किया कि गद्दे स्पंज के हैं और हिलने डुलने में उछल रहे हैं। कवि जी मस्ती लो, फिर देखा जाएगा। मैंने कपड़े उतारे और नेकर बनियान में देर तक उछलता रहा। पापा हम बाहर जा रहे हैं, गुड्डू उदास उदास मेरे पास आया। उसकी ऐसी आवाज मैंने कम ही सुनी थी। पापा हम गुल्ली डंडा खेलने जा रहे हैं, छोटे बोला। तुम लोगों के का दिमाग खराब हो गया है, यह धूप और ऊपर से लू, बाहर जाओगे कहाँ बाहर जाओगे। मुझे गुस्सा आ गया था, वे वापस दरवाजे के पास लौट गए। रानी, ऐसे तो रानी पत्नी के घर का नाम ही था, लेकिन जिस लहजे में मैंने उनसे कहा संबोधन अपने आप ही राजपाट से जुड़ गया। रानी सुख ही सुख है, मैंने तो इतने अंडे और सेब खाए कि पूछो मत, मजा आ गया। अब जरा पता करते कि लंच में क्या क्या तैयार हो रहा है, मैंने आज तक नहीं पूछा लेकिन आज पूछ रही हूँ। अरे रानी, कुएं के भीतर से बोल रही हो क्या? अरे कड़क कर पूछो, अपने मर्द से बतिया रही हो, किसी प्रेमी से नहीं। मैं उछल कर बैठ गया। हाँ बोलो, तुम्हारी क्या तनख्वाह है? क्या मतलब महेश कचा, या तनख्वाह मतलब क्या है इसका? बहरहाल तुम जानती हो, तुम 12 साल से नौकरी कर रहे हो, सानू से अधिक पाते हो, और जब आना हुआ तो कर्जे लेकर आए। जैसे हिंदी फिल्मों की कोई जासूसी अदृश्य शक्ति अपनी गुरगंभीर आवाज में बोलती है, कुछ वैसी ही आवाज मेरे कानों में पड़ी। यार हद हो तुम भी, चलते ही चुकता कर देंगे। कहां से चुकता कर दोगे यार, बेमतलब की बातें करके बोर मत करो। तुम्हारी सुनो पार्श संगीत यानी रिकॉर्ड सुनो, कौन गा रहा है पता है? छाई बहार है, दिया बेकरार है। नहीं अब यही देखो, मशीन और आदमी का फर्क देखो, अगर गाने वाला आदमी होता तो यह न गाता। क्यों? क्योंकि बहार नहीं छाई है, बेहद उमस है, पसीना हो रहा है, बाहर भी लू चल रही है। ऐसी हालत में मौसम ही नहीं कहेंगे, बहार क्या खाक कहेंगे। फिर भी गाना अच्छा है, एक फर्क देखो रिकॉर्ड प्लेयर और रेडियो में। बात थोड़ी विज्ञान की तरफ जरूर जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यह देखने के लिए कि मेरी बात सुनी जा रही है या नहीं रुक गया। उसकी तनख्वाह तुम्हारे से आधी है, तो क्या करूं, डूब मरूं या अपने में से आधी उसे दे दूं? तुम चाहती क्या हो? मैं ताव खा गया, लेकिन लगा कि कहीं कुछ मुझसे गड़बड़ हो गया। जवाब दूसरी तरह का होना चाहिए। डियर डार्लिंग, ऐसा मत समझो कि सानू की सुनकर डार्लिंग कह रहा हूँ, अपने आप कह रहा हूँ मैं। देखो यहाँ से दिल से कह रहा हूँ तो डार्लिंग घुस, इनका एक ही उत्तर है, घुस, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बलात्कार वगैरह। प्रिय ये जो सब आबा काबा देख रही हो ना, सब घुस। पत्नी सोए से बैठ गई, थोड़ी देर बाद उठी और हाल की तरफ चल गई। मैं मन ही मन इस बात के लिए खुश था कि आज पत्नी ने एक बार भी किस्मत का नाम नहीं लिया, इसलिए जब दोबारा वे अंदर आई तो मैं डरा, लेकिन उनका चेहरा अब की और भी चुचका और लंबोतरा नजर आया। वे पलंग पर फिर लेट गई और आंखें फिर छत पर। मेरी बात मानो, तुम नौकरी छोड़ दो। क्या? मैं सक पका गया। नौकरी छोड़ दो? क्यों नौकरी छोड़ दूं? 1200 रुपए महीने क्या काट रहा है? वाह रे वाह, छोड़ दो। और चाहती हो चोरी करूं, डाका डालूं, 420 ही करूं? रुको, इस तरह चिल्लाओ मत। अगर रिकॉर्ड प्लेयर बंद करना आता हो तो पहले उसे बंद कराओ। वाह के खत्म करते करते वे मुस्कुराई, आंखों से नहीं पूरे चेहरे से। मैं उन्हें देख कर सन्न रह गया। मैंने कोमल को आवाज देकर रिकॉर्ड बंद करवा दिया। तुम यह सब कुछ मत करो, बस नौकरी छोड़ दो, खोमचे लगाओ, मूंगफली बेचो, विषाद खाने की दुकान करो, विश्वनाथ गली में चूड़ियां पहनाओ, जो भी करोगे मुझे संतोष होगा, लेकिन यह नौकरी। यार सोना, मैं बेचैनी से भर उठा। यार मेरे डार्लिंग कहने का यही इनाम है, ये तुम्हारी बातें? सुनो सुनो, पूरी बात सुनो। यह बताओ कि सरकारी नौकरी तुम भी करते हो और सानो भी, तुम 12 साल से कर रहे हो, वह 5 साल से। बुद्धि में, ज्ञान में, अनुभव और समझदारी में वह तुमसे पीछे है, लेकिन वह कौन सा हुनर जानता है कि उसके पास सब कुछ है तुम्हारे पास। रुको रुको, अब जब तुमने सवाल किया है तो रुको, मैं खड़ा हो गया। अब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, 16 हो आने खराब है। तुम जैसे लोग इस धरती पर सुखी नहीं रह सकते, दुख चिंता ग्लान आंसू शिकायत इन्हीं के साथ पैदा होते हैं ये लोग, समझी। मैं उतनी दूर से शहर बनारस से इसलिए आया था कि दुनिया देखोगी, तबीयत बहलेगी, खाने पीने को अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी, घूमने के लिए कार मिलेगी, फिर साल भर तो वहाँ सड़ना ही है। लेकिन यहाँ अब मैं तुम्हारे पास नहीं बैठ सकता, मैं बाहर निकलने लगा। मैं जानती हूँ तुम क्या जवाब दोगे, शट अप। मैं जैसे ही बाहर आया कि स्तब्ध रह गया। छोटे दरवाजे के पास नंगी फर्श पर बांह का तकिया बनाए लेट गया था। उसकी आंखों से आंसू गिरे थे और गालों पर सूख गए थे। गुड्डू दीवार का सहारा लिए खड़ा था और हाल खाली पड़ा था। वहां से गुसल खाने में नहाने वाले दीपू और सिटी की खिलखिलाहटें सुनाई पड़ रहे थे। मैंने छोटे को कंधे पर उठाया, चुपके से लाकर बिस्तर पर सुला दिया। पापा घर कब चलोगे, छोटे सोए सोए बोला। अरे जगा है क्या बे, मैंने उसके गाल थपथपाया। और गुड्डू इधर आ, तू वहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, चल सो जा सोना। देख रही हो समासा, आज आए हुए मुश्किल से 7-8 घंटे हुए और पापा घर कब चलोगे, और वहाँ दिमाग चाट रहे थे। तो पहले दिन जो कुछ हुआ उससे अच्छा नहीं कहा जा सकता, किसी भी हालत में नहीं। हम वहाँ तफरीह के लिए गए थे, भौतिक मामलों पर विचार करने के लिए नहीं। लेकिन चीजें हमारी इच्छा के खिलाफ और गड़बड़ होती गईं। बेमुरव्वत खाने के कारण छोटे का पेट खराब हो गया, उसे पतले दस्त आने शुरू हुए। लाख मना करने पर भी वह खाता और गुसल खाने भागता, यहाँ वहाँ से आता, फिर खाता फिर भागता। दवा भी चल रही थी और पेट भी। इसके ठीक उल्टा गुड्डू की हालत थी, खाने में उसकी दिलचस्पी ही खत्म हो गई थी, उसमें अद्भुत बदलाव आता जा रहा था। घर की वे सारी आदतें, धींगा मुस्ती मारपीट उछल कूद जैसे बचपन की बातें हो गई थी। वह काफी गुमसुम रहने लगा था, न हाल में खेलता न बाहर खेलता। वह तो या तो कमरे में बैठा कहानी की किताब पढ़ा करता, या पत्रिकाओं की तस्वीरें देखा करता, या सुबह और शाम के वक्त बरामदे में पड़ी किसी कुर्सी में बैठकर गाल पर हाथ रखे सामने टुकुर टुकुर ताका करता। सानू ने तो नहीं, लेकिन रेखा ने एक दिन दीपू और सीटी की जमकर पिटाई की, क्योंकि उन्होंने गुड्डू और छोटे की वजह से साले हरामी बे जैसी गालियां सीख ली थी और उनके भीतर गौरपन बढ़ गया था। पहले दिन के बाद से ही मेरे और पत्नी के बीच बोलचाल लगभग बंद सी हो गई थी। कूलर की हवा में उन्हें सर्दी लग गई थी, हल्का हल्का बुखार रहता था और खांसी भी आती थी। फिर भी हम हर जगह साथ जाते, घूमते, दावतें खाते और सिनेमा देखते। हमारा रिश्ता एक बड़ी मजेदार स्थिति में पहुंच गया था। हम सानू या रेखा के साथ खूब चहकते, दिल खुलकर बात करते, हंसते, लेकिन जब अपने कमरे में आते चुप। किसी को आभास न था कि हमारे रिश्ते पर क्या गुजर रही है। पत्नी अधिकतर बिस्तरे पर पड़ी पड़ी छत की ओर देखा करते। इसी दौरान जो सबसे अच्छी बात हुई है कि उन्होंने किस्मत को कोसना बंद कर दिया था, लेकिन इसकी जगह ले ली एक खास तरह के मुस्कुराहट ने, जो पहले कभी उनके चेहरे पर नहीं दिखाई पड़ती थी। मैं जब कभी किसी मसले पर उनसे बात करना भी चाहता था तो वे मेरी ओर देखती रहती और धीरे धीरे बस मुस्कुरा देती। उदाहरण के लिए, जब मैंने उनसे पूछा कि सानू मुझसे छोटा है, उसने हमारे बच्चों के लिए सूट खरीदा है, कुछ हमें भी करना चाहिए, हम क्या करें, क्या कर सकते हैं, या क्या हमारे पास इतने पैसे रह जाएंगे कि हम कोमल जंगी दाई ड्राइवर वगैरह को टिप दे सकें, तो वही मुस्कान उनके चेहरे पर नाच आई। और एक बार तो ये मुस्कुराई नहीं, बड़ी चुभती बात कह गई। सिलसिले बार ढंग से, वह तो प्रसंग नहीं याद है, मगर इतना ध्यान आ रहा है कि मैं शानू की बढ़िया वाली जापान पतलून पहने ड्राइंग रूम में नायलान के कालीन पर लेटा था और कोई किताब पलट रहा था। वे आई और देर तक खड़ी रही। पैंट अच्छा लग रहा है, तीसरा या चौथा रोज था जब उनकी जबान अपने आप खुली थी। मैं मारे खुशी के बैठ गया, इसलिए कि बोली तो मैंने टांगे फैलाई और पतलून को गौर से देखा। है ना, और देखो यह कालीन भी कितना अच्छा है, मालूम है नायलान का है, जरा चल कर देखो। और मजा आया कि वे सचमुच चलने लगी और जाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। लतरों में फूल आए थे और पर्दों से हिल मिल गए थे। उन्होंने एक फूल तोड़ा और बोली, देखो यह फूल कितना प्यारा है। हाँ, इस लतर का नाम देखो, अभी याद आ जाएगा, मैं सोचने लगा। इसका मतलब है वे मेरी ओर घूमे, इसका मतलब यह कि बेईमानी और घूसखोरी अच्छी होती है लेकिन दूसरे की चीजें पसंद है, मगर मैं बमक कर खड़ा हो गया। क्या मजेदार बात शुरू हुई थी, लेकिन इस औरत को देखो, इसका दिमाग खराब हो गया है। तुम साली तुम, मैं गुस्से से कांपने लगा और जाने कैसे पत्नी के लिए मेरे मुंह से गाली निकल गई। यही एक मुल्क है जिसमें झूठ फरेब बेईमानी धुर्तता घुसखोरी इतनी हसरत की नजर से देखी जाती है। समझी हसरत की नजर से। यह तुम किससे कह रहे हो, वे खिड़की के सहारे वैसे ही खड़ी रही, तुमसे सबसे और अपने आप से भी। अगर तुम फिल्मों में होते तो बड़े अच्छे संवाद लिखते और इस तरह के कई पैंट भी पहनते। हुए मुस्कुराने लगी। मैं वापस आकर सोफे पर ढा गया। सोना यहाँ आकर तुम्हें क्या हो गया, जो कुछ यहाँ देख सुन रही हो अगर इन्हीं कारणों से है तो इससे पहले भी तुम जानती थी। यार हम यहाँ बड़ी उम्मीद से आए थे लेकिन तुम लगातार मुझ पर बरस रही हो, व्यंग्य कर रही हो, इससे अगर तुम्हें राहत मिलती हो तो ठीक है, करो। नहीं, मुझे गलत मत समझो, यह जरूर है कि यहाँ मेरा दिमाग उलट पुलट हो गया है, अच्छे बुरे और गलत सही का कुछ पता नहीं चल रहा है, अजीब सा घालमेल हो गया है सब। अपने पास जो नहीं था ऊपर ऊपर से भले कुछ कह दिया करूं, लेकिन उसके लिए किसी से कोई शिकायत नहीं थी। शुरू में इधर की नहीं पहले की बात कर रही हूँ मैं। दूसरों को देख कर मुझ में हीनता जरूर पैदा होती थी लेकिन अपने को समझा लेती थी। बाद में तो मुझे उनसे चिढ़ होते होते नफरत तक हो गई थी और आज भी है यह। और मैंने तुमसे जाना था, इसमें दो राय नहीं। तुम्हारी बातें सुन सुनकर तुम्हारे विचारों की जानकारी के कारण, लेकिन यहाँ जिस तरह मैं तुम्हें उन सारी सुविधाओं की तरफ ललचाई आंखों से ताकते हुए देखती हूँ तो सोचती हूँ बुरा न मानना मेरी बात का, सोचती हूँ कहीं इनके खिलाफ तुम इसलिए तो नहीं थे कि दूसरों के पास क्यों है तुम्हारे पास क्यों नहीं। वे खिड़की से चलकर मेरे पास आ गई थी और सामने की कुर्सी पर बैठ गई। उनका स्वर सहज और गंभीर था। एक बात का जवाब दोगे, अगर बेईमानी बुरी चीज है तो ये चीजें अच्छी क्यों लग रही हैं? और अगर ये सचमुच अच्छी हैं तो बेईमानी घुसखोरी कैसे बुरी है। डियर, मैं उठकर बैठ गया, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हारे सवाल को न समझूं। वे शरारत से भरी हंसी हंस पड़ी। यही पूछ रही थी मैं। नहीं, तुम पूछ रही थी कि मैं सानू को गालियां क्यों नहीं देता, उसका मजाक क्यों नहीं उड़ाता, उसके साथ मारपीट क्यों नहीं कर बैठता, और यह भी कि मैं यहाँ खुश क्यों हूँ, उसके ऐशो आराम को देखकर रो क्यों नहीं रहा हूँ। जबकि यह याद रखो कि यह रिश्ता मेरा नहीं तुम्हारा है, बहन तुम्हारी है, यहाँ पर मैं तुम्हारी खातिर हूँ। वरना मैं झटके से दरवाजा खोला और बाहर आ गया। बाहर पिछले दो रोज की तरह आसमान में बादल थे, उमस बढ़ गई थी। यह धूप और लू से तो अच्छा था जून खत्म होने को आ रहा है और अब तक बारिश नहीं हुई थी। सामने कच्ची सड़क थी जिस पर गाड़ी के पहियों के निशान थे और उसके आगे कई खाली और समतल प्लाट थे जिनमें से अधिकांश में ईंटें गिराई गई थी और एक ट्रक खड़ी खड़ी देर से हुर्र हूँ हुर्र कर रही थी। जैसे ही मैं सड़क के किनारे मुड़ा, एक पेड़ के नीचे गुड्डू बैठा हुआ नजर आया। उसके सामने कुछ दूर जहाँ महापालिका का बम पुलिस और कूड़े कचरे का ढेर था, उसकी बगल में कुछ बंजारे डेरा डंडा डाले हुए थे और उनके बच्चे गोलियां खेल रहे थे। उनके पास ही रस्सी में बंधे बंदरों के दो जोड़े थे और गुड्डू की निगाह बंदरों पर जमी थी। तू इस समय यहाँ क्या कर रहा है, वह चौंक कर खड़ा हो गया। यहाँ क्यों बैठा है तू, और क्या करूँ, वह बिना सिर उठाए धीरे से बोला। मैंने उसे गोद में उठा लिया। बेटे तू बुजुर्गों की तरह क्यों बोल रहा है, हैं? पापा आप बच्चों की तरह क्यों लड़ते हैं, हैं? एकदम मेरी आवाज की टोन की नकल करते हुए और मुझे बिराते हुए गुड्डू बोला। पहले तो मैं सकपकाया, फिर उसे चूम लिया बदमाश कहीं के, और हम दोनों एक साथ हंस पड़े खिलखिलाकर। अच्छा एक काम कर, घर जा, अम्मा से कह दे कि पापा स्टेशन गए हैं बनारस के लिए टिकट लेने, हम परसों सुबह की गाड़ी से वापस निकल चलेंगे। मेरे कहते कहते वह खरगोश की तरह मेरी बाहों से सरका और घर की ओर भागा। जब 4 बजे स्टेशन से लौटा तो सानू और रेखा आ चुके थे। क्या अचानक क्या हो गया आप लोगों को, कार्यक्रम तो अभी 10-15 दिन का था, कोई तकलीफ तो नहीं थी यहाँ क्यों डार्लिंग? सानू ने सिगरेट जलाते हुए रेखा को देखा। रेखा पत्नी से बोली, नहीं यह नहीं होगा दीदी, आपकी एक भी न सुनी जाएगी। वे जिस पोशाक में आए थे उसमें डाइनिंग हॉल में बैठे थे, उनके चेहरे पर चिंता और उदासी थी। इसमें संदेह नहीं कि वे अपना हर्ज करके भी हमारे लिए जितना कर सकते थे कर रहे थे। रेखा मुवक्किलों से जितनी जल्दी छुट्टी पा सकती थी पा लेती थी और सारा समय मेरी पत्नी के साथ बिताती थी। जैसा कि पता चला इसके पहले वह किचन में कभी नहीं जाती थी, लेकिन हमारी खातिर वह कुक को निर्देश नहीं देती थी। एक आध घंटा वहाँ मेहनत भी करती थी। डिशेज के बारे में उसने इतनी जानकारी हासिल कर ली थी कि पत्नी को स्वयं अचंभा होता था। एक बार तो उसने जबरन पत्नी को नाइटी पहना दी और वे रात भर सो नहीं सकी। उन्हें लगता था कि वे ऊपर से लेकर नीचे तक नंगी हैं। दीदी जैसी थी वैसी ही रह गई, उसने सुबह कहा, और हम सारे लोग देर तक मजा लेते रहे। सानू तो अक्सर मेरे लिए अपना ऑफिस पहले ही छोड़ देता। रोज किसी न किसी के घर हम निमंत्रित होते, कभी ब्रेकफास्ट पर, कभी लंच पर, कभी डिनर पर। प्रेजेंट्स जो मिला करते सो अलग। मैं साधारण आदमी नहीं, एक महत्वपूर्ण अफसर का साढ़ू भाई था। इन जगहों पर मैं अपने सूफियाना कपड़ों से काम चला ले जाता, लेकिन श्रीमती जी और बच्चों का काम रेखा की साड़ियों और दीपू के सूटों के बगैर न चलता। मेरी परेशानी यह थी कि रोज बियर पीने और मुर्गा खाने के बावजूद मेरी सर्दियों की त्यों थी, न वजन बढ़ रहा था न चर्बी बढ़ रही थी। यह मनमानी मेरे लिए, यह मेरे रहते यह नहीं चलेगा। टिकट वापस करने के लिए कल आदमी भेज दूंगा, उसने मेरी बात बगैर सुने कहा। मैंने तरह तरह के बहाने बनाकर यह साबित कर दिया कि परसों शाम तक घर पहुंचना कितना जरूरी है, फिर भी वह अपनी जगह अड़ा रहा। खैर, फिलहाल आप लोग एक घंटे में तैयार हो जाएं, बच्चे लोग भी। आज घाट की तरफ चलेंगे, वहां से क्लब, फिर मार्केट, और उधर ही आज चड्ढा के यहाँ डिनर है। वह खड़ा हुआ और अपने कमरे में चला गया। मैं जैसे ही कपड़े बदलकर बरामदे में आया, पता नहीं किस तरफ से एक अधेड़ आदमी आया और मेरे पैर गिर पड़ा। मैं चौंक कर पीछे हटा, वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखें गीली थी और वह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। उसके सामने के बाल उड़ गए थे, गाल की हड्डियां बेहद उभर आई थी, जिन पर जबरदस्त मुहासों की घनी परछाइयां बनी हुई थी। उसके नीचे के अगले चार दांत नहीं थे और उनके बीच जीभ बड़े स्थिर भाव से पड़ी थी। मैं ऐसे किसी आदमी से नहीं मिला था। मैंने याद करने की कोशिश की, लेकिन बेकार। कौन है आप, किससे मिलना चाहते हैं, कांपते हुए बोला। आप ही से। मुझसे? कहां से आ रहे हैं आप? साफ धीरे धीरे बोलिए, वह घबराया हुआ था। तकलीफ न हो तो थोड़ा उधर चलें। मैं परेशान हुआ और सोचते हुए पोर्टिको से आगे बढ़ गया। हाँ, अब कहिए सर, किसी रामलाल की याद है आपको? कौन रामलाल, क्या करता है? साहब गौसपुर का रहने वाला था और आपके साथ इंटर तक पढ़ा था। ओह हो, वह रामलाल? तो आप ही उसके चाचा हैं? लेकिन चाचा जी, उसकी पढ़ाई छुड़वाकर आपने अच्छा नहीं किया। जीनियस था वह, कहाँ है आजकल? पहले यह बताइए। उसे खुशी हुई कि मैं रामलाल को भूला नहीं हूँ। थोड़ा शर्माया। साहब मैं ही हूँ रामलाल। ऐ जरा फिर तो कहो, कौन हो तुम? रामलाल? रामलाल मॉनिटर, वही जिसकी खूबसूरती पर भरत बाबू जान छिड़कते थे? मैं चुप हो गया और उसे ध्यान से देखने लगा। पूरे चेहरे पर केवल आंखें बता रही थी कि वह रामलाल रहा होगा। मैंने उसे खींच कर सीने से लगा लिया। यार तू ऐसा हो गया है और यही है इसी शहर में, क्या हो गया है तुझे? उसने जल्दी से अपने को छुड़ा लिया और सहम कर पीछे हट गया। मेरा घर वह है, इसके पीछे वाला। मुझे रिश्ते का पता था और आपके यहाँ आने वाला था, लेकिन जंगी से पता चला कि आप आने वाले हैं। मैं आपको आने के रोज से ही देखता रहा हूँ, तुम मिले क्यों नहीं? मैं उसका हाथ अपनी तरफ खींचा और पैर क्यों छुआ। भैया यह न पूछिए, आपसे एक जरूरी काम है, बेहद जरूरी। कहो क्या बात है? और यह भैया बाबू छोड़ो, सीधे नाम लो, जद्दू। यहाँ नहीं, उधर चलिए, उधर। वह अकेले ही चल पड़ा। सुनो तो, अभी हमें एक जगह जाना है दावत पर, इसलिए यही बताओ, बोलो। मैंने उसका कंधा पकड़ा और उसके साथ आगे बढ़ गया। वह कुछ देर मुंह पाए मेरी ओर ताकता रहा। भाई जान, आप चाहेंगे, अगर आप चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा साहब। वह सानू के दरवाजे की ओर देखने लगा। अजीब अहमक आदमी हो यार, बात तो बताओ। मैं झल्ला गया। भाई जान बताओ मैं संक्षेप में यह कि साहब ने मुझे सस्पेंड कर दिया है। आप विश्वास करें, मेरी कोई गलती नहीं थी। वह पहले गिड़गिड़ाया फिर रोने लगा। मुझे काटो तो खून नहीं। थोड़ी देर खामोश रहा, कुछ कहते नहीं बना। क्यों, पहले आंसू पोछो और सुनो, ठीक से बात करो। सानू के ही ऑफिस में काम करते हो? उसने सिर हिलाया। कागज अभी साहब के पास है, ऊपर नहीं भेजा है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? आप यह मत कहिएगा कि मैंने आपको बताया है। अरे जो पहले पूछते हैं वह बताओ, ऐसा क्यों किया? भाई साहब मेरे पांच बच्चे हैं, बीवी का पिछले साल ही इंतकाल हो गया, छोटा भाई भी यही है मेरे साथ। अभी किसी को नहीं बताया है, सब समझते हैं छुट्टी पर चल रहा हूँ। गाँव पर भी चाचा को खबर नहीं दी है, और मेरी कोई गलती नहीं। साहब ने सस्पेंड कर दिया है बिला वजह। उधर चलिए साहब। साहब का ड्राइवर देख रहा है वह समझ गया होगा। सानू का ड्राइवर सागा गाड़ी की बगल में ईंट पर बैठकर बीड़ी पी रहा था और कभी कभी हमें देख लेता था। मैं आगे बढ़ गया और पेड़ पर उभरी हुई जड़ पर बैठकर चिट लिखने लगा। तो जद्दू भैया मैं घुसखोर हूँ, यही कहा साहब ने, लेकिन कोई कौन घुसखोर नहीं है, क्या मैंने नया लिया था, वे नहीं जानते थे। मैं उनका अर्दली था, उनसे भेंट कराने या मिलवाने के लिए 5 रुपए या 10 रुपए जैसा आसामी हो, बस वे मजे में जानते थे। मेरी गलती ही है कि मैंने उनके भांजे से ले लिया, मुझे क्या मालूम कि कौन भांजा है कौन मामा। बस सस्पेंड, मैंने माफी मांगी कि गिराया कसमें खाई। वह जब तक बोलता रहा मैंने सानू के नाम का कागज लिख लिया। बहुत जरूरी काम से अचानक शहर जाना पड़ रहा है, एक दोस्त के पास अगर रात में न आ सकूं तो बुरा न मानना। हाँ, मेरी इस हरकत के लिए माफ करना और सोना तथा बच्चों को बता देना। मैंने ड्राइवर को चिढ़ दिया और रामलाल के साथ हो लिया।